ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬੈਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉੱਠ ਦਰਮੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦੀਆਂ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਲਾਸਨ ਵਿੱਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾ ਪਾਣੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਰਤ ਉਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਫੁੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੱਲੀ ਗਈ ਗਾਛ, ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਸਭ ਵੀਰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸਦੀ ਜਾਚ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਕਬਰਨ ਪਈਆਂ ਚੋਣ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜਾਰਾਂ ਰੋਣ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੈਦੋਂ ਬਨ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਆਈਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਰੀ ਔਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਅਜੈ ਆਵਾਰਾ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਏਕ ਸੰਵਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ।
ਤੁਮਨੇ ਹਕੀਕਤ ਕੋ ਜੀਆ ਹੈ, ਤੁਮਨੇ ਹਕੀਕਤ ਕੋ ਜੀਆ ਹੈ, ਏਕ ਨਈ ਰੀਤ ਕੋ ਜਨਮ ਦਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੀਠ ਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਲੀਕ ਪੁਰਾਨੀ, ਤੁਮਨੇ ਏਕ ਰਵਾਇਤ ਕੋ ਜਨਮ ਦਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਨਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਸਿਰਫ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੀ ਲੇਖਿਕਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਕੋਈ ਰੀਤ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਾਨਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਔਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੀਤ ਕੇ ਮਾਨਨੇ ਕਾ ਤੋ ਹਮ ਕਿਉਂ ਮਾਨੇ ਉਸਕੋ, ਆਧਾਰ ਤੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੀਤ ਬਗੈਰ ਔਚਿਤ ਕੋ ਮਾਨੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਬਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਮਾਰੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਠਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਯੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਯੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਬੜੇ ਇਸਕੋ ਸੁਖਦ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਜੋ ਲੇਖਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਜ ਸੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ
ਸਮੇਂ
ਸਮੇਂ ਸੇ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ ਲਗਾ ਦੀਜੀਏ ਸਦੀ ਆਗੇ ਥੇ। 70 ਸਾਲ ਹਮਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋ ਹੋ ਗਏ, 70-75 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਠਾਏ ਥੇ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ, ਔਰ ਜੋ ਆਜ ਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਆਜ ਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਤੇ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਨਕੀ ਸੋਚ ਆਗੇ ਥੀ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਲੇਖਕ ਕੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸੇ 70 ਸਾਲ ਆਗੇ ਚਲਤੀ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਆਗੇ ਦੇਖਤੀ ਹੋ, ਤੋ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਰਹਾ ਹੋਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਤੋ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਯੇ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ
ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਕਾਰਨ ਕਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਉਸਕੇ ਕਾਰਨ ਕਾ ਨਿਜਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਸਕੇ ਔਰ ਜੋ ਇਸਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੇਖਕੋ ਦੇਖੇਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਆ ਹੁੰਦਾ
ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਇਸਤਰੀ ਮਨ ਕੋ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਜਨ ਕੇ ਦਰਦ ਕੋ ਕੇਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਓ ਕੋ ਉਠਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਓਂ ਮੇਂ ਡਾਲਾ। ਉਨਕਾ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਉਨਕੀ ਆਤਮਕਥਾ, ਉਸਮੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਾ। ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਲੇਖਕੋ ਮੇਂ, ਹਰ ਰਚਨਾਕਾਰ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜੀ
ਜੋ ਉਨਕਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਆਪਕੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੀ ਦੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਚੇਤਨਾ ਔਰ ਕਾਲਾ ਗੁਲਾਬ।
ਕਾਲ ਚੇਤਨਾ ਔਰ ਕਾਲਾ ਗੁਲਾਬ ਜੀ,
ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪ ਕਾਲ ਚੇਤਨ ਔਰ ਕਾਲਾ ਗੁਲਾਬ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨਕਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਨਾ ਵਿਰੋਧ ਥਾ। ਉਨਕੀ ਕਾਲ ਚੇਤਨ ਔਰ ਕਾਲਾ ਗੁਲਾਬ ਕੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਨਮੇ ਆਪਕੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਖਰ ਰੂਪ ਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਕਿ ਵੋ ਕਿਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਕਿਤਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਨਕੀ ਖਾਲੀ ਇਤਨੀ ਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਆਪਣੇ ਲੇਖਨ ਮੇਂ ਕੀਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਵੀ ਇਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੋ ਤੋੜਾ। ਔਰ ਆਪ ਯੇ ਮਾਨੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ये उनके जीवन का जो चीज बता रहे थे, कह सकते हैं कि आप जब उन्होंने क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन जो है एक कारण रहा है, पर्पज रहा है उस क्वेश्चन करने की। उन्होंने अगर एक सवाल उठाया है तो और लॉजिकल सवाल उठाया कि ऐसा क्यों, अगर उन्होंने सवाल पूछा कि समाज से कि ऐसा क्यों, हिंदू पानी मुस्लिम पानी क्यों, और किसी धर्म जाति के बर्तन अलग क्यों, तो उसका जवाब किसी के पास नहीं था
जी।
सिर्फ ये कहते हैं छोटी जाति छोटी जाति क्यों है, ये जवाब किसी के पास नहीं था। और यही बात आप उनकी जीवन शैली में देख सकते हैं। देखिए उनके आपको शायद पता हो कि शादी हुई थी जब लाहौर के एक जूट व्यापारी थे, हॉजरी डीलर थे, सॉरी हॉजरी डीलर थे, उनसे उनकी शादी हुई थी। और उनकी शादी के बाद वो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी
जी जी।
और आज की दुनिया जमाने में भी अगर कोई स्त्री अगर वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है तो उसके आसपास के लोग यही समझाते रहते हैं कि नहीं कैसे भी निर्वाह कर लो, घर तोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, और बेचारी औरत घुट घुट कर मरती रहती है और अपने अपनी इच्छाओं को मारकर उस जीवन का निर्वाह करती रहती है। और बाद में ये करते रहते कि मैंने मेरा तो जीवन खराब हो गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये समझ लीजिए जो पीढ़ी आज की पीढ़ी इस बारे में थोड़ी हिम्मत दिखाती है, जो आज की पीढ़ी हिम्मत दिखा रही है, उन्होंने ये हिम्मत 70 साल पहले दिखाई थी
जी जी।
हाँ, उन्होंने वो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी तो उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को तोड़ दिया, अलग हो गई वो और अपने पति से अलग हो गई, उन्होंने इस बारे को इस बात को स्वीकार ही नहीं किया। तो इसमें ये मान सकते हैं कि सामाजिक ढांचे को किस तरह से हमारे बदलाव की जरूरत थी, इस बात की आवाज उन्होंने 70 साल पहले उठाई थी, और उस समय जब कोई सही बात सोच भी नहीं सकता था
जी जी।
तो एक हाँ, तो मेरा मानना क्या है कि ये वो लेखिका है जिन्होंने लिखा तो 70 साल पहले है, लेकिन वो आज की पीढ़ी के पढ़ने के लिए भी यथार्थ पर बैठता है कि आज की पीढ़ी किस दिशा में सोचती है, उनका लेखन आज की पीढ़ी के लिए भी बिल्कुल उतना ही सटीक बैठता है।
बिल्कुल
उस खाली समय के हिसाब से नहीं है। और इस मेरे को लगता है कि शायद किसी लेखक ने या किसी विश्लेषक ने ये विश्लेषण नहीं किया कि उनका लेखन अगर आज से 70 साल पहले यथार्थवादी था तो आज के वर्तमान समय में भी बहुत सटीक बैठता है। और मुझे लगता है कि आज ही नहीं और आगे आगे आने वाले 30-40 साल तक उनका लेखन समकालीन जैसा लगेगा, समकालीन लेखक ने लिखा हो।
बिल्कुल
ये कि और किसी लेखक के लिए जून होना बहुत बड़ी बात है कि उसका लेखन उसके समय में ही पढ़ा जाए और वही लेखन आने वाले एक सदी तक सटीक रहे और समकालीन लगे, ये हर एक के बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा लेखक शायद मेरे स्मृति में तो कोई ऐसा लेखक है ही नहीं कोई
जी। हर युग में प्रासंगिक थी वो जी।
हाँ, हर 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 क्षेत्र प्रासंगिक थी उनकी और इसका उन्हें सम्मान मिला। और तो जहाँ तक मुझे पता है शायद अमृता प्रीतम जी ऐसी पहले लेखिका है जो हिंदी और पंजाबी में दोनों लिखती थी और उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला।
पहली महिला थी साहित्य अकादमी का
पुरस्कार, पहली महिला थी। और सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे मानने में मेरी दृष्टि में ये है कि वो ऐसी पहली लेखिका हैं कि जिनको उस समय भी सम्मान मिला और आज के पीढ़ी में उनको उतना ही सम्मान से पढ़ती है
जी, पढ़ते हैं आज भी लोग जी।
हाँ, अमृता प्रीतम आज पुराना नाम नहीं हो गया है, ये वो नाम नहीं है जो अब तक पढ़ा जाता था, ये वो नाम है जो अभी पढ़ा जाता है।
बिल्कुल,
ये एक बड़ी बात है किसी लेखक जाने के बाद ये उसके साहित्य को सम्मान उसको वर्तमान के हिसाब से पढ़ा जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा किसी भी लेखक के साथ नहीं होता है। आपका क्या कहना है बाबू?
बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सर एक सवाल सवाल कह लीजिए या मैं आपके विचार जानना चाहूंगी इस मामले में कि उनके लिए साहिर लुधियानवी जो गीतकार थे उनके साथ और इमरोज के साथ उनका मतलब वो दोस्ती रखती थी अपनी, तो ज्यादातर उनकी रचनाओं को उनके किस्सों के साथ जोड़ के देखा जाता है। मैंने जहाँ पे भी मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं मैंने पढ़ा अमृता प्रीतम जी को, लेकिन जितना भी पढ़ा तो मैं देखती हूँ कि उनके किस्सों के साथ उनको जोड़ के या ये कहकर कि साहिर के साथ जब वो अलग हुई तो उसके बाद उन्होंने अपनी इस तरह की रचनाएं लिखी। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इससे अलग उनकी वास्तविक पहचान भी थी और वो एक शानदार लेखिका थी। और जैसा आपने बताया कि पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था और उनकी रचनाएं दोनों ही भाषाओं में पूरी तरह से पसंद की जाती थी, तो इस संबंध में आपके क्या विचार है कि क्या कहना चाहिए कि खाली उन मतलब कोई पुरुष के साथ उनका अगर दोस्ती थी या उनके संबंध थे तो खाली वो उन्हीं के ऊपर आकर लिखती थी या उनके आधार पर लिखती थी, ऐसा क्यों कहा जाता है, इस मामले में आप क्या कहेंगे?
मैं इसमें बताता हूँ, समाज का दोहरा चरित्र बताता हूँ मैं आपको। आपने एक आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ अलग अलग रहनी चाहिए।
जी जी,
बोलते हैं ना कि भाई मैं दिन में काम करता हूँ वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, और शाम को मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में कोई इंटरफेयर ना करे, मैं उसमें अपने घर में परिवार में बिजी रहता हूँ, ऐसा बोला जाता है ना।
बिल्कुल,
एक आम आदमी एक अपने प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन को अलग रखता है, तो हमें दूसरे के व्यक्तिगत जीवन से इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? उनके किससे दोस्ती थी, किससे उनसे क्लोज दोस्ती थी, किससे अच्छी दोस्ती थी,
मतलब उन्होंने जो लिखा अगर अच्छा भी लिखा तो वो साहिर के कारण लिखा, ये चीज क्यों कही जाती? हर महिला या हर व्यक्ति की अपनी एक आजाद पहचान होनी चाहिए, किसी के साथ उसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए।
नहीं देखिए उन्होंने साहिर जी से प्रेरणा ली है, प्रेरणा तो हम लेते हैं। अब अगर हम अमृता प्रीतम की बात पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनसे कोई कविता पढ़ते पढ़ते हमको प्रेरणा लेकर उनके भाव को किसी और रूप में लिख दे,
और हो सकता है साहिर ने भी बहुत से गीतों में अमृता जी से प्रेरणा ली हो।
तो प्रेरणा लेने का मतलब निजी संबंध नहीं हो जाता, और अगर निजी संबंध है, निजी अगर कुछ उन्हें ज्यादा उनकी नजदीकियां हैं तो व्यक्तिगत जीवन है उनका, व्यक्तिगत जीवन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन गलत तब होता है जब हम ऐसे मानदंड साबित किए हों जो समाज के खिलाफ जाते हों। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आज के जमाने में, जैसे मैंने कहा कि वो अपने जीवन से एक सदी आगे जीती थी, आज के जमाने में आपने देखा होगा ये लिविंग रिलेशनशिप बहुत चल रहा है, और आज की पीढ़ी इस बात को बहुत ही मतलब स्वीकार करती है कि उनका कहना ये है कि अगर हमारे विचार मिलते हैं, हमारे व्यवहार मिलता है, तो हम शादी का बंधन नहीं कर सकते, हम तो आज की पूरी कमिटमेंट भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानती है रीति रिवाज के मुकाबले, है ना। तो उनके उनके रिश्ते में अगर कमिटमेंट था तो अच्छी बात थी, उन्होंने समझ धक्कोसने को नहीं चलाया ना, उन्होंने कमिटमेंट चलाया, और अगर कमिटमेंट चलाया उन्होंने किसी दोस्ती थी या संबंध थे या उनकी निजी जिंदगी थी, तो एक लेखक की निजी जिंदगी को अपने निजी जिंदगी जीने का हासिल नहीं होता क्या?
पर वो ठीक था या नहीं ठीक था ये निर्णय हम नहीं कर सकते, हमको तो उनकी रचनाओं को देखना, और उनकी रचनाओं को उनके निजी संबंधों से एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि ढक दिया गया। कई जगह मैंने पढ़ा है कि कहा गया कि साहिर से अलग हुई तब उन्होंने ये लिखा, इमरोज के साथ रहने लगी तब उन्होंने ये, क्यों? हर इंसान की अपनी एक आजाद पहचान होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि हमारे समाज में सर आप भी देखते होंगे कि अब तो ये चीज काफी कम हुई है, लेकिन महिलाओं के खुद से कुछ कर लेने को अभी भी थोड़ा सा हिचक के साथ स्वीकार किया जाता है। हालांकि ये चीज अब कम हुई है, लेकिन अभी भी वो हिचक बरकरार है। महिलाएं अगर कुछ करती हैं तो उसको अभी भी कहने में थोड़ा संकोच किया जाता है समाज में कि महिला ने खुद स्वतंत्र रूप से ऐसा किया, उसमें किसी न किसी का योगदान जरूर लाया जाता है। तो ये परंपरा गलत है, ये सोच गलत है।
नहीं, इसमें एक बात बताइए, जैसे मान लिया, लेकिन प्रेरणा तो हर कोई लेता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं पहले लिखता था तो अलग तरह से लिखता था, अब लिखता हूँ तो अलग तरह से लिखता हूँ, मैं भी लोगों को पढ़ता हूँ सुनता हूँ तो मेरे सोचने में मेरे लिखने में फर्क आता ही आता है, वो है ना। अब वो शायद जी के साथ रही, अमरोज के साथ रही, उनके सोचने में फर्क आया, जीवन काल में फर्क आता है। आदमी जीवन काल बदलता है तो सोच में विचार में सब में फर्क आता है, और जब सोच विचार में फर्क आएगा तो लिखने में फर्क आएगा। तो इसको हम ये माने कि उन्होंने उनसे प्रेरणा क्यों ली, ये तो बात नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात क्या है, अगर वो गलत था, मान हम थोड़ी मान लेते हैं कि उन्होंने गलत किया, तो आज की पीढ़ी उस परंपरा को आगे क्यों बढ़ा रही है? देखिए उनको पता था कि यही सच्चाई है, यही जीवन के यही नियम है, अगर हम उसमें गलत परंपरा में बंधे हुए थे तो समाज भी गलती थी, अमृता प्रीतम जी गलती नहीं थी।
बिल्कुल,
है ना। अगर समाज अलग गलत रीति चल रहा है और वो सही रीति चल रही है, ठीक है, ओके नहीं थी, तो गलती समाज की रही। अगर वो गलत होता तो आज की पीढ़ी उसको फॉलो क्यों कर रही है? आखिर लिविंग रिलेशनशिप जो है और स्वतंत्र संबंध वो क्यों अपनाए जा रहे हैं? उन्होंने इसलिए अपनाए जा रहे हैं कि वो प्रासंगिक हैं, और किसी भी संबंध में किसी भी रिश्ते में सामाजिक रीति रिवाज ज्यादा अहमियत नहीं रखते जितना आपकी कमिटमेंट, आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट और आपका समर्पण जितना आपको माने रखता है। अगर किसी सामाजिक रिश्ते में समर्पण नहीं है तो उस रिश्ते का नाम का मतलब क्या हुआ?
जी
ना। और इसी आधार पर आज की पीढ़ी स्वतंत्र संबंधों पर चल रही है, तो उन्होंने 70 साल पहले उसके बीज डाले थे और आज जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं। अगर वो गलत होता तो आज की पीढ़ी उसको फॉलो क्यों करती है? उसके पीछे क्यों चलती है? उसको स्वीकार क्यों करती?
नहीं सर, जैसा आपने कहा कि समर्पण विश्वास ये किसी भी रिश्ते में होना चाहिए, मान लीजिए पति पत्नी है या दोस्त है, माता पिता, बच्चे, कोई भी भाई बहन, हर रिश्ते में ये संबंधों में ये चीज होनी चाहिए, विश्वास, समर्पण, एक दूसरे के लिए हम त्याग कर सके ऐसी भावना। वो चीज आज शायद बहुत कम हो गई है, खत्म तो नहीं बोलूंगी लेकिन काफी कम हो गई है। और ये सोशल मीडिया का जमाना होने से हम अपनी एक एक फीलिंग्स, अपने कोई भी हमारे जो मनोभाव आते हैं तुरंत उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, हालांकि वो क्षणिक भी हो सकते हैं, भाव हो सकता है हमारे मन में कुछ ऐसा आया कि हम अकेले हैं, हमें मतलब कोई भी ऐसे हमें दुख की फीलिंग हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम तुरंत उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। हालांकि हो सकता है कि जब तक वो बात हमारी हजारों लोगों तक चली जाए, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, और बाद में वो भाव हमारे मन में शायद हो भी ना, तो ये सारी चीजें भी आज हो गई हैं, इन सब से भी शायद काफी गड़बड़ियां पैदा होती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं।
सोशल मीडिया के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये बात सही है कि ठीक है, देखिए किसी इंसान में कभी कभी एक भाव आता है कि मैं किसी को कह दूं, तो सोशल मीडिया पर हम कह देते हैं। होता क्या है कि मेरे मन में क्षणिक भाव आया, मैंने कह दिया, मेरे क्षणिक भाव को मुझे कोई हक नहीं मिलता कि मैं सोशल मीडिया में सबको कह दूं। हो सकता है कि मेरा क्षणिक भाव रहा हो और दुनिया ने उसको पढ़ लिया, तो दुनिया से क्या क्या इस्तेमाल करेगी बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल,
मैं उसको डायरी में लिख सकता हूँ। देखिए हमारे एक प्रथा रही है कि संस्कृत डायरी लिखने की लेखकों में रही है, हम डायरी में लिख सकते हैं ना। डायरी में आप लिख दीजिए, किसी को पता चलेगा, आपके मन का गुबार भी निकल जाएगा, आपने लिख भी दिया और किसी को पता भी नहीं चला।
अच्छा अमिता जी ने अगर अपने इस तरह की चीजों को शेयर किया अपनी रसीदी टिकट में, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा या कुछ, तो अंत तक उन संबंधों के साथ उन्होंने खुद को जिया, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया या पछतावा किया हो, ऐसा जहां तक मुझे समझ में आता है, मैंने जितना भी पढ़ा अमृता जी को, कहीं पर भी उनके जीवन में मैंने पछतावा नहीं देखा कि किसी रिश्ते का उनको पछतावा रहा हो। तो या तो हम अगर अपना शेयर करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है तो हम उसमें करेंगे, तो या तो हम शेयर करें तो उस चीज का पछतावा ना करें, फिर हमें पछतावा भी होने लगता है कि नहीं हमने गलत किया, तो फिर इस तरह की जो तुरंत से हम हर चीज शेयर करते हैं वो चीजें गलत है। जैसा एक दिन आप और हम बात कर रहे थे कि कोई फेस्टिवल आता है तो हम लोग उस त्योहार को मनाने की जगह हमारे मन में ये पहले भाव आता है कि हम कुछ फोटोग्राफ खींचे हमको सोशल मीडिया में शेयर करने हैं, तो ये सारी चीजें आजकल बहुत हो गई हैं सर, तो इन सबको भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की, मैनेज करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है।
इसमें समस्या कहाँ है, क्या है कि सोशल मीडिया अभी स्थापित नहीं हुआ, ये नई नई रीत है, ठीक है ना। हमने इसको ये मान, सोशल मीडिया किस लिए है कि अगर मुझे बात अपनी अकस्मात बहुत से लोगों के सामने पहुंचानी है तो मैं पहुंचा सकूं, इसीलिए सोशल मीडिया बनाया कि मेरी बात जल्दी लोगों तक पहुंच जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने रंग लगाया वो दिखाऊं, मैंने कपड़े पहने वो दिखाऊं, मेरे कपड़े पहने रंग लगाने से, मेरे दीपक जलाने से लोगों पर क्या संदेश जाता है, कोई संदेश नहीं जाता भाई। मैंने रंग लगाया, होली मनाई, होली सब मनाते हैं, इसमें संदेश देने क्या बात है, होली के दिन होली मनाएंगे ना,
बिल्कुल
है ना। सोशल मीडिया का फायदा तब है जब मैंने अपना कोई संदेश दिया और वो लोगों तक पहुंचा, लोगों को प्रभावित करे। वास्तव में क्या है, सोशल मीडिया को क्या भी रीति रिवाज और नियम बनना भी तय है, हमें पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का आधार क्या है, हम उसे कैसे इस्तेमाल करना है। हम अभी सीख रहे हैं, अभी सीखने वाले स्टेज पर है, अभी हमें बहुत कुछ सीखना है कि सोशल मीडिया भी स्थापित नहीं हुआ है अपने, इसके बारे में हमारा ज्ञान विज्ञान स्थापित होना बहुत जरूरी है कि हमारी रीति कैसे होनी चाहिए, कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लोग उसको शायद समझ नहीं पा रहे हैं।
अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर पॉडकास्ट में या गूगल मीट से जुड़ते हैं कुछ, ये भी एक तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ही है, तो कितना इनका सार्थक हमारी बहस होती है, दूर दूर तक, देश विदेश तक भी हम बात करते हैं आप जैसे विद्वानों से, हमारा हम लोग कुछ सीखते हैं, तो ये सारी चीजें उसके जो सकारात्मक पहलू है वो तो है, लेकिन हम लोग थोड़ा नकारात्मक भी हो जाते हैं, और ये चीज मुझे आजकल नहीं समझ आती कि तुरंत ही हम लोग अपनी हर चीज शेयर करने लगते हैं, और फिर अगर शेयर करें तो फिर अमृता प्रीतम जैसी हमारे अंदर एक बेबाकी, एक बोल्डनेस होनी चाहिए कि उन चीजों को हम स्वीकार करें जो शायद हमें नहीं होती है, हम तुरंत हिम्मत हार जाते हैं और हमें लगने लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा, कोई फिर जैसे मान लीजिए किसी ने भी, आपने, मैंने, किसी ने भी शेयर किया सोशल मीडिया पर कि हम बड़े अकेले हैं, हम इस समय बड़े उदास हैं, अब इसमें जरूर हमें कमेंट आएंगे लोगों के कि क्यों ऐसा, क्या अब वो चीज हमें बुरी लगने लगती है, हमें कोई ऐसे क्यों लिख रहा है, हमें इस तरह से किसी ने लिखने की किसी की हिम्मत कैसे हो गई, तो ये सारी चीजें होती हैं। या तो हम उन सबके लिए तैयार रहें और अगर नहीं है तो फिर जहां तक मुझे लगता है कि क्षणिक भाव को तुरंत हमें नहीं सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत होता है और उससे बहुत सारी मतलब गड़बड़ी भी पैदा हो जाती है। सत्या सिंह जी आई थी हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर, तो उन्होंने एक बार यही बताया था कि इस तरह से होने से फेसबुक पर और व्हाट्सएप के द्वारा कितने लोगों के जीवन खराब गए, जो कि इस तरह उन्होंने शेयर किया और उनका मतलब बहुत कोई अच्छे अंजाम नहीं हुए इन बातों के।
मैं बताता हूँ इसका परेशानी क्या है इसमें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम सामाजिक रीत को बिना किसी कारण, बिना किसी स्पष्टीकरण उसको अनुसरण करने लगते हैं। हमें पता नहीं होता कि इस रीति का निर्वाह हम क्यों कर रहे हैं, है ना। सोशल मीडिया में भी ऐसी हुआ है, सोशल मीडिया मार्केट में आया, लोगों में आया, समाज में आया, और हमने उसका इस्तेमाल क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उसको कैसे हमें निर्वाह करना है, ये हम सीखा ही नहीं है। हमने सिर्फ सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया में फोटो डालते हैं, हमने सिर्फ डालना शुरू कर दिया, है ना। हाँ, हमने उसके बारे में जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसे स्थापित नहीं किया। तो सबसे पहले हमें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, पहचान समझ होनी चाहिए। अगर ज्ञान और समझ के बगैर हम उसको पहचानेंगे तो वो कुरीति बन जाती है, और यही कारण है कि सोशल मीडिया एक कुरीति बन गई है। जबकि अमृता प्रीतम जी ने जो स्थापित किया था वो कुरीति नहीं की थी, उन्होंने वो बकायदा सोचा समझा परखा हुआ स्थापित सत्य था, है ना। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ रीति को फॉलो करते हैं, हम उसके तथ्य को पीछे नहीं जाते। मैं दो पंक्तियां देना चाहूंगा। अमृता प्रीतम जी ने जो उन्होंने बोल्ड स्टेप उठाया, जो उन्होंने अपना परिवार छोड़ा और फिर बाद में उन्होंने जिस रिश्ते में रही और उसको उन्होंने रिश्ते में रही नहीं, उन्होंने निभाया उसको। इसीलिए मैं कहता हूँ, कहते हैं कि दो भाई होते हैं और कई बार ऐसे मित्र मिल जाता है कि जो भाई से भी बढ़कर होता है। अब मित्र जो है हमारे माँ से पैदा नहीं होता, लेकिन हमारे भाई से बढ़कर हो जाता है। तो ये साबित करता है कि रिश्ते भावों से चलते हैं, और अमृता प्रीतम जी ने साबित किया कि रिश्तों में भावना जरूरी होती है, नाम जरूरी नहीं होता, नाम आवश्यक नहीं होता है। उन्होंने उनकी जो बोल्डनेस के बारे में दो कविता देना चाहूंगा कि खुद की भी राह बनाकर तो देख, खुद की भी राह बनाकर तो देख, पुराने रास्तों पर तेरे कदम कौन देखेगा। अमृता प्रीतम जी ने अपनी राह खुद बनाई
जी।
हाँ, उन्होंने लोगों के बनाए हुए चरण पर काम नहीं किया, उन्होंने अपने रिश्ते खुद बनाए, उन्होंने अपने रिश्ते खुद निभाए, उन्होंने अपनी लेखनी खुद बनाई, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जीवन की चीज जो सीखा उसके आधार पर लिखा। इसे एक कारण है कि उनके विभिन्न काल की लेखनी में अलग अलग चीज लिखी गई है। आज जो हम फॉलो करते हैं वो अमृता प्रीतम जी के बनाए नक्शे कदम फॉलो करते हैं, ये रास्ता हमारा बनाया हुआ नहीं है, हम उनको फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया को भी हमने सिर्फ अंधाधुंध चलने लगे हैं, हमें उसका औचित्य नहीं पता कि सोशल मीडिया का औचित्य क्या है
जी।
तो ये दो लाइनें मेरे दिमाग में इसलिए आई कि मैं कह सकूं कि जैसे उन्होंने अपने लिए राह बनाई, क्या आज का युवा अपनी राह को समझ पाएगा कि मैं इस राह पर क्यों चल रहा हूँ
जी,
है ना। आज की ये बहुत बड़ी बात है कि अगर अमृता प्रीतम जी ने अपने जमाने में उस समय के समाज को भविष्य दिखाया,
बिल्कुल सर,
और वो भविष्य आज की पीढ़ी का वर्तमान है।
उन्होंने अपने जीवन के साथ देश की तमाम महिलाओं के जीवन को जैसे जोड़ दिया था जी सर।
हाँ, उन्होंने साहित्य को समाज में भविष्य दिखाया जो सिर्फ समझ नहीं पाए, इसी कारण से हमने उनके व्यक्तिगत चरित्र पर आक्षेप किया। ये गलत बात है, व्यक्तिगत जीवन रहना चाहिए। उस समय के समाज में उनकी समझ
जब से सर सोशल मीडिया है तब से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं देखती हूँ कि और ज्यादा बातें होने लगी। पहले शायद आप लोग पढ़ते रहे होंगे जब तो इतना नहीं रहा होगा कि इस तरह से कहा जाए, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर, मैंने अमृता प्रीतम जी के ऊपर कार्यक्रम करना था तो मैंने नेट पर देखना शुरू किया तो ज्यादातर जितने आर्टिकल मिल रहे थे यहीं कि जब वो साहिर से अलग हुई तो उन्होंने ऐसे लिखा, फिर इमरोज के साथ रही है, मतलब मुझे कहीं पे भी उनकी एक तरह से कहा जाए स्वतंत्र छवि देखने को मिले उनके लेखन की, ऐसे बहुत कम आर्टिकल मिले, बहुत पहले के पोस्ट किए हुए थे। तो ये मुझे लगा कि ये गलत चीज है,
ये एक गलत चीज है। ये देखिए क्या था, मान लिया मैं किसी व्यक्ति से मिला
जी,
ठीक है ना, और उसकी प्रभावित होकर मैंने कुछ लिखा
जी,
तो व्यक्ति तुम मेरी आजादी नहीं चली गई, उन्होंने मैंने उस व्यक्ति के प्रभाव जिस गुण से प्रभावित उस गुण को मैंने शब्द में डाला और समाज के सामने प्रस्तुत किया, है ना। तो उस व्यक्ति का गुण अपनी जगह पर, लेकिन मेरी लेखन क्षमता अपनी जगह पर है। अगर वो इंग्रोज से मिली और पहले जनों से मिली, उनके गुणों से प्रभावित हुई, तो उन्होंने उनके गुणों को शब्दों के रूप में दिया, ये भी एक बड़ी बात है ना। ये तो हर के बस का तो नहीं है ना, ये तो इन लोगों से और लोग भी तो मिले होंगे ना, उन्होंने तो नहीं लिखा,
बिल्कुल सर।
तो ये प्रेरणा लेकर उसको शब्दों के रूप में देना, साहित्य में देना और समाज के सामने प्रस्तुत करना, ये भी एक गुण है
जी,
है ना। कहते हैं ना, अगर शब्दों को कलम ना मिले तो वो अधूरे रह जाते हैं।
बिल्कुल,
मैं उनके उनकी उनकी लेखनी के जो जिस तरह से उन्होंने लिखा है, प्रभावित होकर लिखा है, उनको दो शब्द देना चाहूंगा मैं कि मैं बहुत दूर तक घूम आया। एक शब्द कह रहा है ये बात एक शब्द कह रहा है कि मैं बहुत दूर तक घूम आया बस एक कलम की तलाश में। आप ये मानिए कि अमृता प्रीतम जी ने उन शब्दों को, उन प्रेरणाओं को, उन जो गुण उन्होंने देखे, उनको कलम दिया, उन्होंने अपने कलम के जरिए से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। हम इस तरह क्यों देखते हैं कि कि ये गलत क्या क्या सही, हम ये क्यों देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या मिला। उन्होंने उनके अंदर ये प्रखर क्षमता थी कि उन्होंने उस गुणों को उभार कर शब्दों में ढालकर हमारे सामने खाने के तौर पर प्रस्तुत किया है।
जी जी,
तो हम उस चीज को देखें जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, ये क्यों देखते हैं कैसे क्या, अरे कैसे तो क्या, ये क्षमता उनके अंदर थी, किसी और के अंदर तो नहीं थी ना, किसी और लेखक ने तो नहीं किया है।
बिल्कुल बिल्कुल,
ये बहुत बड़ी बात है। कहते कि हम देखिए क्या होता है कि आम मानस की जो जन भावना होती है वो आम स्तर की होती है, वो ज्ञानी विज्ञानी के तौर पर नहीं सोचता। ज्ञानी विज्ञानी के तौर पर अमृता प्रीतम जैसे लोग ही सोच सकते हैं, और शायद उनके जितनी चेतना जितनी समझ है वो एक आम इंसान की समझ के बाहर है। तो मैं तो अपने श्रोताओं से यह अनुरोध करूंगा कि वो उनके व्यक्तिगत जीवन को ना देखें, उनकी लेखनी को देखें, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन व्यक्तिगत जीवन होता है,
किसी भी रचनाकार का व्यक्तिगत जीवन उत्तर वो मतलब
हमें किसी भी व्यक्तिगत जीवन पर कभी कुछ बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके समय अनुसार उसकी भावना क्या रही होगी, उसके बंधन क्या रहेंगे, उसकी परेशानियां क्या रही होंगी, उसके मजबूरियां क्या रहेंगी, वो हमें नहीं पता है ना।
अब इन्होंने इनकी जो रसीदी टिकट, इनकी आत्मकथा है सर, तो मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था रसीदी टिकट इन्होंने नाम क्यों दिया इसको, तो इसके पीछे की कहानी मैंने एक बार पढ़ी, बड़ी मजेदार है, वो भी मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी कि उसके लिए यह कि एक बार अमृता प्रीतम जी और खुशवंत सिंह बैठकर बातें कर रहे थे, तो खुशवंत सिंह जी ने कहा कि तेरी जीवनी का क्या है, बस एक आध हादसा लिखना चाहो तो रसीदी टिकट पर ही इसको लिख सकते हैं। तो ये बात अमृता जी को इतनी ज्यादा मतलब वही क्या कह लीजिए कलाकार का एक व्यक्तित्व कि उनको ऐसी मन में चुभ गई कि जब उन्होंने फिर अपनी आत्मकथा लिखी तो उसका नाम ही उन्होंने रसीदी टिकट लिख दिया। तो देखिए कैसे कैसे ये लोग मतलब कितनी मौलिकता थी इनके अंदर और कितने क्रिएटिव थे ये लोग रचनाकार, और आपस में बैठकर बातें करते थे और एक दूसरे से इतना लेते थे, तो ये सारी चीजों का असर आता था। और आजकल तो हम कोई रचना भी करते हैं तो खाली सोशल मीडिया से ही लेते हैं और सोशल मीडिया में ही दे देते हैं, वो उसी में खत्म हो जाता है सब।
देखिए इसमें इस तरह से लगा जाए, अगर हम बोल दें कि उन्होंने अपने हादसों को लिखा, लेकिन हादसों अपने हादसों को आम जनता के सामने पेश करना एक एक पाठ के रूप में इतना आसान नहीं है।
नहीं आसान, बहुत कठिन है सर, बहुत कठिन।
लोग अपने हाथ में उभर भी नहीं पाते हैं। आपने सब विश्लेषण करके शब्दों में डालकर लोगों के सामने दिया, देखो मैंने ये भुगता है, मैंने मेरे को ये परेशानी हुई है और मैंने ये फैसला लिया, मैंने ये किया, तो आप ऐसा ना करें
जी।
ये इसमें बहुत बड़ा मतलब जिगरा किए,
बिल्कुल
हिम्मत चाहिए कि आप अपने अपने हाथों से आप साहित्य बना रहे हैं। नहीं तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या है कि अपने ऊपर हंसना।
बिल्कुल,
और अपने बारे में लिखकर अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव को आप समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। हर साहित्यकार ऐसा नहीं कर सकता। सामाजिक चेतना, हम नारी के बारे में लिख देंगे, हम बालकों के बारे में लिख देंगे, हम वृद्धों के बारे में लिख देंगे, हम सामाजिक कुरीति के बारे में लिख देंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आपने क्या भोगा है, क्या आप उसको बता सकते हैं कि मेरा अनुभव ये रहा है और इस अनुभव से आप ना गुजरे, ये बताने से आसान थोड़ी है। समाज में होता क्या है, एक कुरीति को हम भुगतते हैं, हम उसके कारण परेशान होते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं कह पाते कि ये कुरीति आप मत अपनाओ। हम ये बोलते नहीं रीत है, आप अपना इसको पूरा करो, जबकि हमने उसको खुद भुगता होता है। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि मैंने कुरीति को भुगता है, मेरे लिए मैंने मेरे को कुरीति ने इस तरह कष्ट दिया है, आप इसके इसको मत करो क्योंकि कष्ट देगा आपको। ऐसा कोई नहीं करता है, ये उन्होंने अमृता प्रीतम जी ने किया। तो ये कह देना कि उन्होंने हाथों पर लिखा, ठीक है, तो उन्होंने तो समझ को जगाया ना,
तो इसमें ये जवाब दे तो दिया आपने। उनकी पुस्तक जब प्रकाशित हुई तो देखिए सर आज तक इतने सालों बाद वो उतने ही पसंद से लोग पढ़ते हैं, तो खुशवंत सिंह जी को जवाब मिल तो गया कि एक आध हादसा नहीं, वो तो पूरा उनका जीवन चरित्र था उसमें, तो ये तो जवाब उन्होंने दे दिया।
किसी लेखक की रचना को तीसरी चौथी पीढ़ी समकालीन मान के पढ़े, ये बहुत बड़ी बात है। उनके जमाने जब लिखा गया था, कहते हैं आज से 50-60 में उन्होंने लिखा, और आज 60 साल के बाद कम से कम लगा लीजिए 3 पीढ़ी निकल चुकी है, और उनका साहित्य आज की पीढ़ी के सार्थक बैठा है, तो इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता किसी भी लेखक के।
मैं पढ़ रही थी कहीं सर कि उनकी ये जो कविता थी आज अखा बारिश शानू, तो ये पढ़कर पाकिस्तान से जब मतलब बंटवारा हो गया और इस देश में वो आ गई थी हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान से कोई व्यक्ति उनके लिए केले लेकर आया था, मतलब वो कोई गरीब व्यक्ति थे और उनके पास कुछ और नहीं था, तो वो केले लेकर पाकिस्तान से आए कि तुमने ये कविता लिखी और मुझे इतनी पसंद है, तो अमृता जी के लिए वो लेकर आए थे। तो मतलब इतना लोग, आपने जैसा कहा कि आम जनमानस की वो कवित्री थी, तो उनको आम जनमानस इतना पसंद करता था
अमृता। मैंने पहले बताया कि अमृता प्रीतम जी इसलिए अलग थी कि उन्होंने समाज को, आम जनमानस को लिखा है, ना कि उन्हें समस्या को सिर्फ उठाया है।
बिल्कुल,
उन्होंने उसका समाधान भी दिया, उसका दर्द भी दिया है कि ये इस चीज से ये नुकसान है, ये दर्द है, इसका ये समाधान है।
जी।
जैसे अगर लगाइए हमारे जो पुरुष प्रधान समाज में, पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति क्या होती है, उन्होंने भुगता, उन्होंने उस बेड़ी को तोड़ा, उन्होंने अपने जीवन मूल्य स्थापित किए और ऐसे स्थापित किए कि आज भी उसका अनुसरण किया जा रहा है। तो आप इसको इस तरह लिखे ना कि उन्होंने नई दिशा दी है।
बिल्कुल नई दिशा दी है।
और ये मतलब बहुत गलत बात है हमारे समाज की। जब भी कोई इंसान हमारे समाज को नई दिशा देता तो हम उसका विरोध करते ही है, जबकि कुछ सालों बाद हम खुद उसका अनुसरण करने लग जाते।
जी।
ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि अमृता प्रीतम जी ने जो बीज तब बोया था उसके फल आज निकल रहे हैं।
बिल्कुल जी,
ये बात है। तो मेरा मानना इस तरह से है कि मुझे लगता है कि शायद मेरे विश्लेषण में शायद कोई गलती ना रही हो।
नहीं नहीं,
शायद श्रोता पसंद, शायद श्रोता पसंद करें, क्योंकि आज का मुझे ये सवाल, ये विषय उठाना इसलिए आज जरूरी था कि उनका, ठीक है जन्म दिवस है, वो तो एक कल बात है कि उनकी श्रद्धांजलि भी बनती है और सम्मान साथ तो उनके सामने सर झुकाता हूँ कि हम आज अमृता प्रीतम जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो हैसियत में बहुत छोटा हूँ कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनके बारे में बात कर सकूँ। फिर भी मैंने कोशिश की है, मैं हिम्मत कर रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा अमृता जी अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ।
नहीं सर,
लेकिन हाँ, लेकिन ये हमारे समाज की बात है कि हम अगर उनसे हम ये लिख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर वो 100 साल बाद के समाज को देख सकती है तो क्या आज हम 10 साल बाद क्या होने वाला है उसको नहीं देख सकते।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर,
है ना। क्या हम आज के दिनों में ही आज के दिखावे में ही उलझे रहेंगे? आज अगर सोशल मीडिया आ गया है तो क्या अमृता प्रीतम जी से प्रेरणा लेकर हमारे आज के बदलते परिवेश को 50 साल बाद कहाँ जाने वाला नहीं देख सकते? अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते।
बिल्कुल,
अमृता प्रीतम जी का लेखन हमें प्रेरित करता है कि आगे देखो, भविष्य देखो, और जो भविष्य देख सकता है वही अमृता प्रीतम जी से सही प्रेरणा ले सकता है, वरना नहीं ले सकता।
जी सर, आपने तो सर जब चौहान पर आवारा की बातें कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो आपने तब मेरे से यही बात कही थी कि हम लोग, मतलब आपने ये बोला था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कार्यक्रम कि जिसमें उस समय के भी लेखकों को और रचनाकारों को या किसी भी कलाकार को लेकर और आज के समय से उसको जोड़कर हम लें। तो ये आपने बहुत अच्छा विश्लेषण आज किया कि उनकी बातों को आज के सोशल मीडिया के जमाने से, और सोशल मीडिया में भी क्या फायदे और क्या नुकसान है। बहुत सारे देखे फायदे भी, हम लोग दूर दूर तक लोगों से कनेक्ट होते हैं, आज मैं और आप जो इस समय बात कर रहे हैं वो भी ये सोशल मीडिया ये तरह से, लेकिन ये बहुत अच्छे फायदे भी इसके, लेकिन जो नुकसान है वो भी आपने बताया और कैसे आपने बताया कि हिम्मत होनी चाहिए। तो बहुत सार्थक विश्लेषण है सर। अमृता जी जहाँ पर होंगी बहुत खुश होंगी आपसे, ऐसी बात नहीं है। और हम इन रचनाकारों को, आपने ठीक कहा कि इनके बारे में बात कर पा रहे हैं, इनको, इनके बारे में 2 शब्द हम बोल भी पा रहे हैं, तो हमारा ये सौभाग्य है। तो ये बहुत हम आपके आभारी हैं सर, आपने इतना अच्छा सार्थक विश्लेषण किया। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो क्या कहना चाहूंगा, जिस तरह से अमृता प्रीतम जी ने रीत स्थापित की है कि भविष्य देखो
जी,
मैं आज की पीढ़ी से यही अनुरोध करना चाहूंगा, श्रोताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान में जीना जरूरी है लेकिन भविष्य के लिए मार्ग प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने हमारे लिए मार्ग बनाया तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ रचनाएं और कुछ मार्गदर्शन और कुछ ऐसे मूल्य देकर जाएं कि उनके लिए आगे चलना आसान हो जाए, ना कि अंध विरोध या अंध अनुसरण करें।
बहुत ठीक कहा सर आपने, खाली हम लिखने के लिए ना लिखें, उससे कुछ समाज का कुरीतियों का नाश हो और इस तरह की चीजें कुछ अच्छा सार्थक कर पाए, ऐसा हमारा होना चाहिए लेखन का।
और एक लेखक का कर्तव्य ये होना चाहिए कि सिर्फ समस्या उठाए नहीं, समस्या का निवारण भी दे,
पर
ऐसा निवारण दे कि वो आगे आगे आने वाले 50 वर्षों तक मार्ग दिखाए।
और
अमृता प्रीतम जी ने साबित किया है, उन्होंने ऐसा लिखा जो आज से 70 साल बाद 100 साल बाद सार्थक हो रहा है, तो क्या हम 50 साल बाद की नहीं सोच सकते? आज के बारे में समस्या उठा देना तो बड़ी बात नहीं है, समस्या तो उठा सकते हैं, लेकिन क्या हमारी काबिलियत इसमें है, क्या हम उसके समाधान दे सकते हैं
जी?
क्या हम 20 साल आने वाले 20 सालों के बाद समाज कैसा होगा, क्या हम उसका उसका प्रारूप दे सकते हैं क्या? अगर हम ये कर सकते हैं तो शायद हम अमिताभ प्रीतम जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं और एक सार्थक लेखक हो सकते हैं।
जी जी, ऐसे लोग युग की विभूति कहलाते हैं सर, वाकई युग की विभूति थी वो भी।
जी
जी सर, बहुत बहुत आभार आपका सर, आपने समय दिया और चुभन पर आकर हम लोगों को, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी।
आपका बहुत बहुत आभार और श्रोताओं को प्रणाम।
धन्यवाद सर।
नमस्कार। नमस्कार।